हे समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, रामायण की कथा आपने अनेक बार सुनी होगी या टीवी सीरियल में भी आपने रामायण को देखा होगा। उसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत ही प्रेरक पात्र हैं, लेकिन दो विशेष पात्र हैं जिनकी चर्चा आज मैं करना चाहूंगा समाधान कार्यक्रम में। एक विभीषण जी थे जो रावण के राज्य में रहा करते थे और दूसरी मंथरा थी जो कि राम के राज्य में रहा करती थी। विभीषण रावण के राज्य में होते हुए भी अपने आप को उन्होंने बिगाड़ा नहीं, अपने अंदर बुराइयां नहीं आने दी, और मंथरा राम के राज्य में होते हुए भी वो अपने आप को सुधार नहीं पाई। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी भी स्थान पे रहें लेकिन अपने आप को अच्छाई की ओर ले चलें या बुराई की ओर ले चलें। कई बार हम दोष सामने वाले को देते हैं, परिस्थितियों को देते हैं, बातों को देते हैं, लेकिन इन दोनों पात्रों से स्पष्ट हो जाता है कि ये हम पे होता है कि हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन का आदर्श कौन है। विभीषण के आदर्श श्री राम थे, इसलिए उनके अंदर अच्छाइयां रहीं, लेकिन मंथरा कहीं न कहीं ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलती रही, दूसरों को भी जलाती रही और फलतः बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर घर कर गईं। तो हम चाहे आज बुरे परिवेश में हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन यदि हम अच्छे आदर्श अपने लिए स्थापित रखते हैं तो अच्छाइयां हमारे जीवन में आती चली जाती हैं, बुराइयां हमसे दूर भागती चली जाती हैं। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स।
ये हमेशा से कहा जाता रहा है भ्राता जी कि व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, और साथ ही वो क्या प्राप्त करता है या क्या खोता है,
दोनों चीज हो गई इसमें। एक लोग कहते हैं जैसा संग वैसा रंग
जी,
जिस संग में तुम रहोगे तुम पर उसका रंग चढ़ जाएगा। पर विभीषण ने इसको फेल कर दिया, मंथरा ने फेल कर दिया। तो इम्पोर्टेंट बात जानने की यह है कि मैन हिमसेल्फ इज द क्रिएटर
जी।
वातावरण से वो कहीं अधिक प्रभावशाली है अगर वो अपनी शक्तियों को पहचाने, और वो वातावरण को चार्ज कर सकता है और वातावरण के इफेक्ट से मुक्त रह सकता है। तो हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने का लक्ष्य बना ले, ये बात हर जगह कारगर सिद्ध होती है। एक स्टूडेंट कहता है कॉलेज का वातावरण बड़ा खराब है, एक हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी कहता है मेरे साथी तो उल्टी सुलटी बात करते हैं, सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। एक ऑफिस एम्प्लॉई कहता है कि ऑफिस में हम 10 लोग एक साथ काम करते हैं, सारा दिन वो लोग गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, हम अपने विचारों को शुद्ध कैसे करें। और भी कहीं भी जहां ये शिकायतें हैं, उन सब के लिए ये विभीषण का संदेश सबसे सुंदर संदेश है, उनका प्रैक्टिकल जीवन का दृष्टांत है ये, और वो जीवन ही संदेश दे रहा है सबको कि तुम जैसा चाहे बन सकते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम बदल सकते हो, वो तुम्हें क्यों बदलें। मेक योर सेल्फ सो पावरफुल, सो स्पिरिचुअल, सो एनर्जेटिक कि आपके वाइब्रेशंस उनको जाएं। और इस फॉर्मूले को यदि सब प्रयोग करें तो एक एक घर में एक एक माता सबको बदल सकती है, एक ऑफिस में एक व्यक्ति सबको बदल सकता है, एक क्लास में एक स्टूडेंट सब पर अपनी छाप छोड़ सकता है, उसमें भी टीचर विशेष रूप से सब स्टूडेंट्स को बदल सकता है। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी पावर है, पावर टू क्रिएट, वी आर मास्टर क्रिएटर, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब हार मानने की या निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं या कहते भी हैं कि कलयुग है और कलयुग में ये सारी चीजें, मतलब अच्छी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हम चाहें तो शायद अच्छी चीजों पर।
बिल्कुल, हम सब ये देख रहे हैं, हम भी कलयुग में रहते हैं
जी।
हमारे बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहने बिल्कुल कलयुग में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं। चलो हम तो आश्रम में रहते हैं, पर बहुत सारे लोग ग्रस्त में हैं और वो कलयुग के प्रभाव से पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। उन्हीं के लिए उदाहरण दिया जाता है, उनका जीवन कमल पुष्प के समान है जो कीचड़ में रहता है, उसके ऊपर आप पानी डालो सब गिर जाएगा, कीचड़ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं, वो खिला रहता है। तो वास्तव में ये मनुष्य के अपने ऊपर है। और इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारी प्योरिटी में, हमारे सुंदर विचारों में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। ये जानने योग्य है कि निगेटिव वाइब्रेशंस, निगेटिव संकल्पों के वाइब्रेशंस वीक होते हैं, पॉजिटिव संकल्पों के वाइब्रेशंस उनसे हजार गुना पावरफुल होते हैं। जैसे बदबू कितनी भी हो, एक छोटी सी अगरबत्ती पावरफुल है ना, सब बदबू को नष्ट कर देती है। तो हमें अपने सुंदर विचारों पे ख्याल करना चाहिए। हम जितना पॉजिटिव होंगे तो कलयुग के अंधकार में रहते भी हमारा प्रकाश अनेकों को प्रकाश देता रहेगा।
जी 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 जी, मतलब अपने ऊपर ही सारी बातें हैं। हम खुद को पॉजिटिव रखें, शक्तिशाली रखें और एक अच्छा आदर्श अपने जीवन में बना के रखें। व्रता जी, वो भी एक बहुत महत्व रखता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य हमने क्या बनाया है, हमारे आदर्श कौन है, क्योंकि लगातार उसी से हम प्रेरित होते रहे।
बिल्कुल, देखिए हमारे सामने उदाहरण है, महात्मा गांधी भी तो उन्हीं लोगों के बीच थे ना।
जी जी,
लोकमान्य तिलक भी वहीं थे, स्वामी विवेकानंद भी वहीं थे और बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं। अपने जीवन को उन्होंने आदर्श बनाया, लेकिन आज के आदर्श दूसरे लोग हो गए हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, फिल्मों के बड़े बड़े एक्टर, वो जो सिखा दें वही सब सीख लेते हैं। ठीक है, उनसे हमें अच्छी बात सीखनी चाहिए, हम उनके विरोधी नहीं है, पर एक्टर्स और फिल्मों को देखिए, अगर वो सोच लें कि हमें युग बदलना है तो एक्टर्स में वो शक्ति है। अगर वो सब कुछ रॉयल कर लें और हमारी फिल्में एक ऐसी चीजें दिखाने लगे लोगों को जिससे समाज का निर्माण हो। देखिए हमारे सामने हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, हमारी कुछ दादियां ऐसे आइडियल हैं, उनका लाइफ ऐसा एग्जाम्पल है जिसे देखकर सभी बहुत कुछ सीखते हैं और फॉलो करते हैं। तो हरेक के सामने यदि ऐसा एग्जाम्पल हो, और मनुष्य को ऐसा एग्जाम्पल रखने भी चाहिए, कईयों के सामने हैं लेकिन वो उस पर गौर नहीं करते, वो अपनी चाल चलते हैं। एक सुंदर आदर्श रखना, अपने जीवन को आदर्श में बनाना, ये संसार के परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी बात है।
जी जी, लेकिन क्या एक चुनौती वाली स्थिति नहीं है व्रता जी? जैसे पूरे रावण राज्य में एक विभीषण, शायद उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा होगा। उनके भाइयों ने भी उनको बहुत कुछ कहा होगा कि खाता हमारा है और गाता तू राम का है। और ऐसे ही मंत्रा की स्थिति देख लें यदि, तो शायद वो स्वामी भक्तन थे, शायद उसको ऐसा लगता रहा होगा कि मैं अपनी मालकिन के बेटे के लिए सोच रही हूँ, इसलिए मेरा सोचना जायज है। तो कई बार व्यक्ति को बहुत कुछ, जो अच्छे हैं उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और जो ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे ठीक अपने आप को समझते हैं कि मैं तो स्वामी भक्ति निभा रही हूँ तो मैं ठीक हूँ।
बिल्कुल, वो मंथर तो यही सोचा ना, अभी मौका है। हाँ। कि कहीं की मैं दासी हूँ तो उसको अच्छी सीख देने का। पर रहस्य तो ये है कि देवताओं ने सरस्वती को भेज दिया था कि जाओ उसकी जीप पे बैठ जाओ, राम को तो वन में जाके राक्षसों का संहार करना, ये तो अभी गद्दी पर बैठने लगे।
मतलब ये भी लीला थी, ऐसा कहते थे,
वही लोग दिखाते हैं। लेकिन विभीषण के केस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए एक तो यही कि सत्य को या परमात्म मार्ग पे चलने वालों को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन दूसरी चीज ये भी, देखिए विभीषण के मन में राम है, राम की शक्ति इतनी ज्यादा है कि विभीषण रावण के संपूर्ण साम्राज्य के प्रभाव से मुक्त है। परमात्मा की शक्ति इतनी जबरदस्त है, जिसके साथ वो हो जाए, वो कलयुग के प्रभाव से, विकारों के प्रभाव से, व्यसनों के प्रभाव से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। इसलिए राजयोग का परम महत्व है, क्योंकि इसमें सर्वशक्तिमान की जो परम शक्ति है उसकी शक्तियां हमारे साथ रहने लगती हैं, तो हम भी डिटैच हो जाते हैं।
बिल्कुल, और प्रहलाद की भी शायद ऐसी ही बात आती है व्रता जी। चलिए, मतलब हम अच्छाई के मार्ग पे यदि चलें तो परमात्मा शक्ति हमें मिलती रहेगी और हमें लड़खड़ाने की, डगमगाने की और निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं है। आइए व्रता जी, इसी सुंदर बात के साथ मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल हमें दीपा ने भेजा है और ये कहती है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, सुबह उठने की कोशिश करती हूँ तो सुबह उठ भी नहीं पा रही हूँ, तो बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ। आजकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी, एकाग्र नहीं होते, कहीं कहीं की और बातें याद आने लगती हैं।
अभी अभी मैं आ रहा था तो फोन आ गया कि मैं, मेरा रिजल्ट कल आने वाला है, ऐसी शायद ग्रेजुएशन का है, और मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मैं नर्वस हो गया हूँ, मुझे नींद नहीं आई शायद रात, मैं डर रहा हूँ, डरा डरा हूँ, न खाने को मन कर रहा है। मैंने कहा तो क्यों? कहा कल रिजल्ट आएगा। अरे मैं तो, रिजल्ट आएगा तो क्या बात है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा ना, तो मन तुमने जो एक्सपेक्ट किया उसके अनुरूप आएगा, चिंता नहीं करो, अभी से अभ्यास कर लो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तो देखिये ये सब एक मन की बहुत बड़ी कमजोरियां है ना, इसे मनुष्य को युवकों को पार अवश्य होना है। इसकी भी यही बात है, मैं इसको कुछ राय देना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम समीप है, हो सकता है एग्जाम हो गए हो।
एग्जाम चल ही रहे हैं जी, सेकंड ईयर बीएससी में है ये।
हाँ तो एग्जाम चल ही रहे हैं, रोज सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार याद करे। ठीक है, एग्जाम है, मैं इनको ये नहीं कहूंगा 4 बजे उठे, भले 5:30 उठे और तैयार होके 7 बजे जाना होता होगा एग्जाम देने के लिए, 5:30 तक उठ के ये अच्छे अभ्यास कर ले और तभी एक 10 मिनट योग अभ्यास भी कर ले। और योग अभ्यास में मैं फिर से वो प्रैक्टिस सबको बता देना चाहता हूँ जो विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है, बहुत कल्याणकारी है। मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, स्वराज्यधिकारी हूँ, ये बहुत सुंदर शब्द है, यानी अपनी मालिक हूँ, स्वयं पर राज करने वाली हूँ, मन बुद्धि दोनों की मालिक हूँ। अब जैसे ये पढ़ने बैठे, ये अभ्यास करे और ऑर्डर दे मन को, हे मेरे मन अब मुझे स्टडी करनी, तुम शांत बैठ जाओ, जैसे बच्चों को बैठा देते ना, तुम बैठ जाओ इधर। हे मेरी बुद्धि अब तुम एकाग्र हो जाओ, जो मैं पढ़ू तो सबको याद कर लेना और परीक्षा के समय सब इमर्ज कर देना। ये इन्हें दिन में 4-5 बार अभ्यास कर लेना, ये स्टडी करें, बार बार करें। और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी करते रहें तो एक भय भी खत्म होगा और इससे एकाग्र चित्त हो जाएगा। और जब ये पेपर हॉल में बैठे हैं और पेपर सामने आ गया है या आ रहा है, उससे पहले ये पुनः यही अभ्यास कर लें, हे मेरी बुद्धि अब तुम एकाग्र, हे मेरे मन शांत, हे मेरी बुद्धि जो मैंने पढ़ा है अब तक सब इमर्ज कर देना और तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर परफेक्ट देने हैं। देखो ये एक बहुत सुंदर संकल्प है, मैंने ये कराया कईयों के, जो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है अब कोई गलती न हो, तुम्हें परफेक्टली काम करना है 3 घंटे के लिए। अपनी बुद्धि को जैसे ये आदेश दे दिया और इनको महसूस होगा स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ये अभ्यास करके, पहला अभ्यास करेंगी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शक्तियाँ इमर्ज हो गई, फिर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, खुद के राजा बन गए, बुद्धि को आदेश दिया अब तुमने जो पढ़ा सब इमर्ज कर दे और हर प्रश्न का उत्तर परफेक्ट एक्यूरेट देना, कहीं गलती न होने पाए, बुद्धि उस डायरेक्शन में काम करने लगी, बस ये करेंगी तो कोई डर की बात ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, सफल होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मन भी लगेगा और सब प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदर लिखा जाएगा।
क्या इसके लिए सेंटर पे जाकर के राज्यों का अभ्यास इन्हें करना चाहिए या ऐसे ही?
देखिए अब तो इनका एग्जाम चल रहा है, अब उसकी इनको जरूरत नहीं, अन्यथा ये 5:30 तक उठकर 10-15 मिनट योग करके फिर अपना तैयार हो जाए। और बहुत मस्ती से मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज मेरा पेपर बहुत सुंदर जाएगा, आई विल एंजॉय एवरीथिंग, रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा, ऐसे सुंदर संकल्प ये मन में क्रिएट करे तब से।
जी जी,
तो इससे क्या होता है, एक उमंग उत्साह मन में रहता है तो वो जो निगेटिविटी है, जो घबराहट है, जो अनेक तरह की बातें मनुष्य के मन में रहती है विद्यार्थियों के एग्जाम से पहले, जिसका इफेक्ट आंसर लिखने पर आता है, उससे मुक्त हो जाएंगे
जी जी।
और सब फर्स्ट क्लास,
मतलब अच्छे विचार क्रिएट किए जाएं ताकि हमारे अंदर का विश्वास भी जागृत हो। कई बार ऐसा होता है ब्रदर जी कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई होती, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और अब मुझे कल या परसों जाके पेपर देना है, और अब भी जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा व्यक्ति विचलित हो जाता है, डर जाता है कि अब भगवान ही मेरा मालिक है।
देखिए ये होता है, इससे बचने के लिए एक तो पहले से ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना ही चाहिए बच्चों को, और अगर 2 दिन भी बचे हैं तो ये अभ्यास जो मैंने बताए ये 5 बार सारे दिन में करके अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, घबराने से काम नहीं चलता। मान लो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ था पढ़ने में और हम घर पे भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन लक्ष्य रखें कि अगर 6 क्वेश्चन करने 5 तो मुझे मिल नहीं है और सब कुछ अच्छा होगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मन जितना स्टेबल होगा, मन में जितने उमंग उत्साह के विचार आएंगे उतना सब कुछ अच्छा होगा। मान लो 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो किसी को करने प्राय 6 ही होते हैं वो उसने कर दिए, लेकिन हरेक में नंबर कटने लगे घबराहट के कारण कुछ का कुछ लिखा गया, शब्दों की मिस्टेक हो गई, कुछ और गलती हो गई, तो मजा नहीं आएगा। और मान लो 5 क्वेश्चन आ गए जो हमने तैयार किए हुए और हम बिल्कुल शांत भाव से और बड़े मजे से आनंद लेते हुए उनके आंसर लिखते हैं और हर एक में से हमें 10 में से 8 मिलते हैं, 9 मिलते हैं। घबराहट न हो, अपने मन की स्थिति को स्थिर भी रखें, स्टेबल, एकाग्र, और मन में सुंदर विचार जो मैंने कहे, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वयं शिव बाबा मेरे साथ है, आई विल एंजॉय माय एग्जाम, मेरा एग्जाम बहुत सुंदर जाएगा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, वाह कितना सुंदर समय आया है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ऐसे विचार करें
खुशी से, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं खुशी से कि चलो आज फलानी फिल्म लगी है देख आते हैं, वैसे ही खुशी से हम एग्जामिनेशन हॉल में,
बिल्कुल ऐसे मान लो एक बैट्समैन है, अब वो जा रहा है, अभी एक आउट हो गया, इसका नंबर आया, बैट इसके हाथ में जा रहा है, अभी ये क्या सोचता है, तुरंत देखिए घबराहट से सोचता है, अरे पता नहीं जल्दी आउट ना हो जाऊं, तो ये जल्दी आउट होगा, और यदि ये यहाँ से वहां तक जाने में 1 मिनट लगाता है और एंजॉय करता है, ओ आई विल एंजॉय माई बैटिंग और सक्सेस इज माई बर्थ राइट, मैं इतने रन बनाऊंगा, सब आनंदित होंगे मेरा खेल देखकर, तो वैसा ही होगा। अभी भी एक क्रिकेटर मेरे पास आया, मैं आ रहा था मिलने आया, पूरी टीम आई मिलने के लिए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का ग्रुप आया हुआ, तो कहा यंग लड़का था कि मैं खेलता हूँ, बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो मैं उसको भी यही बता रहा था कि तुम ऐसे करना। तो देखिए ये सबको, चाहे विद्यार्थी हो चाहे बड़े हो, सबको याद रखना, किसी कर्म करने से पहले जो हमारी मनोस्थिति होती है उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ता है, ये एक सुंदर कर्म फिलोसॉफी सबको याद रखनी है। इसलिए चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई और काम करने जा रहे हैं,
जी जी,
मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक माता जी अपना पर्स लेकर जिसमें 5,000 रूपये पड़े हैं और मार्केट जा रही है कुछ खरीदने, अब वो पहले से पर्स संभाल रही है और डर के जा रही है कोई मेरा पर्स छीन न ले, कहीं पैसे चोरी न हो जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए, इसका इफेक्ट अलग होगा। और ये माता घर से चली और सुंदर संकल्प कर रही है, ओ आज तो मैं अच्छे से अच्छी चीज लाऊंगी, सस्ते दाम में लाऊंगी और मैं अपनी शॉपिंग को एंजॉय करूंगी, ये आधा पौना घंटा मेरे लिए घर की बातों से मुक्त रह के एंजॉयमेंट का समय है, तो इसका रिजल्ट दूसरा आएगा।
जी, जी।
तो ये कर्म फिलोसॉफी सभी को जान लेनी चाहिए, कर्म के पहले जिस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं, उसका इफेक्ट संपूर्ण कर्म पर आता है।
लेकिन प्रिपरेशन का भी शायद इसका बहुत ज्यादा महत्व तो होता ही रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा असर आता है यदि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जो बहुत अच्छा बैट्समैन होता है वो एंजॉय करता है, लेकिन जो थोड़ा सा अभी शुरुआत कर रहा है या थोड़ा ढीला ढाला है या 2 विकेट गिर गए हैं 2 बॉल में, अब हैट्रिक का चांस है सामने वाले का, तो थोड़ा घबरा ही जाता है बंदा यदि पहला है तो। लेकिन विशेष करके ये प्रैक्टिस कर ले। एक विशेष चीज और आती है बेटा जी, एक फोन कॉल आया था हमारे पास, अब उस लड़की का भी एग्जाम था लेकिन उसकी पूरी तैयारी नहीं हुई थी। अब उसने ये कहा कि हमारी टीचर्स ने हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है, पूरी क्लास की यही स्थिति है, और ये कह दिया गया है कि आप लोग जो चाहें चीजें यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया। अब मेरा इनर जो कॉन्शियस है वो बाइट कर रहा है कि मैं देख के नहीं लिखूंगा, चीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन ये सबको छुट्टी दी गई है। अब मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज में हूँ, करूं या ना करूं, ऐसे ही आप क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए सजेशन तो मेरा यही है कि मनुष्य अपनी तैयारी के साथ अपनी योग्यता को डेवलप करके जो कुछ करेगा वो उसके लिए सदा के लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, किताब खोल के रख दी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने कभी किताब पढ़ी नहीं उनको आप किताबें दे दो अच्छी अच्छी, उनको ढूंढने में ही समय लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है कहाँ कभी पन्ने, और घबराहट में और जल्दी होगा वहीं और आगे पन्ना पलट देंगे, पता नहीं कहाँ चला गया। तो एक्चुअली प्रिपरेशन करना ही बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा केस, अब मैं इसमें थोड़ा फ्लेक्सीबल भी करना चाहूंगा इन विद्यार्थियों को, अगर कह ही दिया जाता कि आप किताब यूज कर सकते हैं, इसमें इनकी तो कोई चीटिंग वाली बात नहीं, और अगर कोई कठिनाई आ गई तो इन्हें यूज कर लेना चाहिए क्योंकि इनको आदेश मिल चुका है।
बिल्कुल, यदि कंप्लीट मतलब तैयारी नहीं हो पाई है और यदि कह दिया गया है तो हम किस स्थिति में अपने आप को परेशान ना करें।
बाकी पढ़ाई का अर्थ अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपनी मेमोरी में वो सब चीजें उतार देनी है। नहीं तो वही हाल होता है कि लोगों ने एमए कर लिया, जैसे उदाहरण दिया जा रहा था कि टीचर साहब से पूछा, इतिहास के टीचर से, कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी थे। तो फिर वो ऐसा ही होता है, जो किताब देख के लिखेंगे उनको तो पता नहीं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे या राष्ट्रपति थे, उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
अच्छा, एक स्थिति और प्रत्यय जी कि मान लीजिए मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या मैं कुछ ऐसा विशेष अभ्यास कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मेरे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, मैं चाहता था, किसी कारण से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरे पास एक हफ्ते का समय है, क्या कुछ विशेष प्रैक्टिस हो सकती है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस तैयार करूं जिससे मुझे चीटिंग भी ना करनी पड़े, ऑनेस्टली मैं अपना पेपर लिखूं?
एक तो देखिए, जो मैंने प्रैक्टिस बताई स्वराज अधिकारी की, मास्टर सर्व शक्तिवान की, वो, और अगर 10 दिन का एक लंबा समय है, 10 दिन बहुत होते हैं, तो पहले से ही एक विजन बना लें अपने मन में। पेपर आ गया है, मैं हॉल में बैठा हूं, बैठी हूं, पेपर आया है, 10 क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने तैयार किए। अब बहुत अच्छी योग अभ्यास के बाद ये काम किया जाएगा, ये बिना राजयोग के अभ्यास के नहीं होगा। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर आधा घंटा एक अच्छा मेडिटेशन करके संकल्प कर लें, जो क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगी वही आएंगे, और एक वो विजन बनाई, तो उनका ध्यान उन्हीं पे जाएगा जो आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के सबकॉन्शियस माइंड जुट जाते हैं। कोई इसे कल्पना ना सोचे, कोई इसे और कुछ भी ना समझ ले कि कोइंसिडेंटली अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जिस प्रोफेसर ने पेपर बनाया है जी, उसका सबकॉन्शियस माइंड और इस स्टूडेंट का सबकॉन्शियस माइंड दोनों बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, और उसने जो पेपर बनाया क्योंकि वो उसकी कॉन्शियस में छपे हुए हैं, उसी अनुसार इनका ध्यान जाएगा, उनके वाइब्रेशंस इनके सबकॉन्शियस माइंड में आने के, और इनका सबकॉन्शियस माइंड उधर ही ले जाएगा इसको जो आने वाले। ये प्रैक्टिस भी की जा सकती
मतलब
है,
ये एक प्रकार से पेपर लीक किया जा सकता है।
हाँ, इस तरह अलौकिक विधि है पेपर लीक करने की,
मतलब यदि तैयारी नहीं है तो जी।
पर इसके लिए मनोस्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
जी 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 प्रताप जी, ऐसा ही एक हमारे पास मेल है, श्रीजा जी ने हैदराबाद से भेजा है, कहती है कि मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा जो बेटा है 15 साल का है, 10वीं कक्षा में है, लेकिन बहुत लेजी है और बहुत ही केयरलेस है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, अच्छा स्टूडेंट है वैसे वो, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन एक समस्या उसके साथ ये हो रही है कि जब भी वो पढ़ने बैठता है तो उसे नींद आने लगती है, वो कठिन मेहनत भी करना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है पढ़ने बैठते ही नींद आने की, इससे वो परेशान है, हम भी परेशान।
लेजी, लेजी है ना, लेजी माना लोजी गया ये तो लेजी तो होते हैं कई बच्चे। एक तो इनको ध्यान देना पड़ेगा, उसका भोजन थोड़ा सा हल्का दिया जाए, उसको थोड़ा तेल आदि ज्यादा नहीं दिया जाए, तले भुने थोड़ा, जब अब ये समय इम्पोर्टेंट आ रहा है, बिल्कुल उसको एक सिंपल भोजन पे रखा जाए, और उसको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाया जाए, और ये 5-7 मिनट रोज सवेरे करे तो उसके ब्रेन को एनर्जी जाएगी, और ये सुस्ती का जो उसका एक संस्कार ही बन गया वो समाप्त हो जाएगा, और तब अगर वो इंटेलिजेंट ही है तो वो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा।
वैसे वो कह रही हैं ब्रता जी कि वो पढ़ने के लिए बहुत लगता है, मतलब कठिन मेहनत भी करता है, लेकिन बस ये वाली जो समस्या, क्या उसको खड़े खड़े पढ़ाया जा सकता है?
नहीं, खड़े खड़े भी, क्योंकि लेजी व्यक्ति का जो ब्रेन है वो भी लेजी हो जाता है, वो ग्रहण ही नहीं करेगा, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, थोड़े सवेरे आसन एक्सरसाइज कर ले और भोजन पे ध्यान दे, तो चुस्ती रहेगी और ब्रेन एक्टिव रहेगा।
बिल्कुल ब्रता जी, कई बार ऐसा होता है कि एक दबाव पेरेंट्स की तरफ से डाला जाता है कि तुमको इतना इतना करना ही है, इतना इतना पढ़ना ही है, या कई बार सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण भी क्या ऐसी स्थिति आ जाती है बच्चों की कि वो इजीली उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए थकान या नींद वाली स्थिति
है? ये भी है, ये उनकी आती है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और ब्रेन का लेवल भी बहुत सुंदर नहीं है, अब ये दबाव उनको और डल कर देता है। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए खुला माहौल बच्चों को दें, इस तरह का प्रेशर भी न करें, उनका उमंग उत्साह बढ़ाए, उमंग उत्साह बढ़ाए, और थोड़ा जो मैंने बातें बताई इन पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
जी जी जी, चलिए प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विद्यार्थियों के लिए आपने बहुत सुंदर टिप्स दिए हैं। और वैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए कि कैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर की भी बात होती है और इनके लिए भी एक गौरव की बात होती है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे अंक ला रहे हैं, इन सभी अभ्यासों से अच्छे अंक लाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। मित्रों, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं मैं आना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक सामाजिक मुद्दा है, मैं ये कहूंगा कि कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिन्हें हम दोषी ठहराते हैं कि फलाने व्यक्ति के कारण हमारी आज ऐसी स्थिति है या हमारे अंदर ऐसी बुराइयां हैं। लेकिन किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। उनकी पंक्तियां ये थीं कि काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है, कांटों के बीच रहकर भी फूलों को पाया जा सकता है, और यदि इरादे बुलंद हों तो कैसी भी परिस्थिति हो उसे बदला जा सकता है, नर्क को भी स्वर्ग में तब्दील किया जा सकता है। तो फाइनली ये हमारे ऊपर आ जाता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति कैसी बनाना चाहते हैं, हम अपना व्यवहार कैसा रखना चाहते हैं, हम अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं। बात होती है अपने आदर्श की, बात होती है अपने सिद्धांत की। हम अपने जीवन को चाहे तो राम तुल्य बना लें, चाहे तो रावण तुल्य बना लें, और हम सबकी यही कामना होती है कि हम श्री राम जी जैसा बने, आदर्श बने, जिनके जाने के बाद भी लोग याद करें। क्योंकि रावण को यदि हम याद करते भी हैं तो उन्हें जलाते हैं, उन्हें बड़ा बहुत ही क्या कहें अपशब्द कहते हैं कि हमें रावण जैसा नहीं बनना है, राम जैसा हर एक बनना चाहता है। तो क्यों ना हम भी अच्छाइयों की ओर बढ़ें और परिस्थितियों को दोष ना देते हुए अपने अंदर की अच्छाइयों को जागृत करते चलें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस वायदे के साथ दीजिए इजाजत कि कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां,
सारा ये जहां
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।